एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो तकनीक के भविष्य पर तो सोचने को मजबूर करती ही है, लेकिन जिसके दिल में आप कहें तो इंसानी जज्बात धड़कते हैं।
हाँ,
हम बात कर रहे हैं काजुओ इशिगुरो की उपन्यास क्लारा एंड द सन की।
जी,
इशिगुरो, जिन्हें 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, वो अपनी खास शैली के लिए जाने जाते हैं। मतलब बहुत ही सदी हुई संयमित भाषा।
बिल्कुल, और वो यादें, पहचान की गुत्थियां, और अक्सर ऐसे नैरेटर्स जो शायद खुद भी पूरी कहानी नहीं समझ रहे होते।
हाँ बिल्कुल, अविश्वसनीय नैरेटर।
हाँ, और क्लारा एंड द सन जो नोबेल के बाद उनका पहला उपन्यास था, वो इसी कड़ी को आगे बढ़ाता है।
अच्छा,
ये एक तरह से स्पेक्युलेटिव फिक्शन है, मतलब एक ऐसी कहानी जो भविष्य की कल्पना करती है, पूछती है क्या होता अगर।
हाँ, व्हाट इफ।
और यहाँ ये सवाल एक आर्टिफिशियल फ्रेंड यानी एएफ के नजरिए से पूछा गया है। ये अपने आप में ही अनोखा है ना?
हाँ बिल्कुल, एक मशीन की आंखों से इंसानी दुनिया को देखना,
सही।
और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीन क्लारा के जरिए इशिगुरो प्रेम, चेतना, अकेलेपन और इंसान होने के मतलब जैसे गहरे सवालों को खंगालते हैं।
जी,
तो चलिए क्लारा की दुनिया से ही शुरुआत करते हैं। ये एएफ आखिर हैं क्या?
तो कहानी हमें एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जहां बच्चों के लिए आर्टिफिशियल फ्रेंड्स खरीदना आम बात हो गई है,
अच्छा,
खासकर शायद अमीर परिवारों में। ये एएफ सिर्फ खिलौने नहीं है बल्कि साथी हैं, सीखने में मदद करने वाले। हमारी नरेटर क्लारा वो एक ऐसी ही एएफ है, B2 मॉडल के।
B2 मॉडल।
हाँ, और वो बाकियों से थोड़ी अलग है। उसकी ऑब्जर्वेशन की जो पावर है ना, चीजों को देखने और समझने की ताकत, वो असाधारण है। वो सौर ऊर्जा से चलती है, और सूरज को वो सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं मानती, उसके लिए सूरज वो जीवन देने वाला है, पोषण करने वाला, लगभग ईश्वर की तरह।
ये दिलचस्प है, सूरज को ईश्वर मानना एक मशीन के द्वारा।
हाँ, और कहानी की शुरुआत में वो एक स्टोर की खिड़की पर खड़ी है, बाहर की दुनिया को देख रही है, इंसानी रिश्तों को, मुस्कुराहटों को, झगड़ों को समझने की कोशिश कर रही है।
जैसे कोई इंसानियत का पोड क्रैक करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ वैसा ही।
बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। और यहीं उसकी मुलाकात होती है जोसी से।
हाँ जोसी,
जोसी आर्थर, एक 14 साल की तेज लेकिन थोड़ी बीमार सी लगने वाली लड़की, वो क्लारा को चुनती है।
अच्छा,
और क्लारा के लिए ये एक नई शुरुआत है, स्टोर की उस बंद दुनिया से निकलकर जोसी के घर जाना, उसकी जिंदगी में शामिल होना।
लेकिन आपने कहा ये एफ हैं, इनका भविष्य हमेशा अच्छा नहीं होता।
नहीं, बिल्कुल नहीं, तकनीक की दुनिया है ना, तो जब ये पुराने हो जाते हैं या कम उपयोगी लगते हैं तो इन्हें हटा दिया जाता है। कहानी में बाद में एक जगह का जिक्र आता है, यार्ड।
यार्ड मतलब कबाड़खाना।
हाँ, एक तरह से। और ये बात जानने के बाद ना, क्लारा की कहानी और भी मतलब दिल को छू जाती है, उसका पूरा सफर।
तो क्लारा जोसी के घर पहुंचती है और यहीं से कहानी का असली ताना बाना बुनना शुरू होता है। जोसी की बीमारी, ये कोई आम बीमारी नहीं है शायद।
नहीं, ये आम नहीं है। पता चलता है कि जोसी की बीमारी लिफ्टिंग नाम की एक प्रक्रिया का नतीजा है।
लिफ्टिंग?
हाँ, ये एक तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिससे बच्चों की बुद्धि और क्षमताएं बढ़ाई जाती हैं ताकि वो भविष्य की मुश्किल दुनिया में मुकाबला कर सकें।
ओहो, मतलब कंपटीशन के लिए बच्चों को जेनेटिकली मॉडिफाई करना।
बिल्कुल, लेकिन इस प्रक्रिया के खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसा जोसी के साथ हुआ।
यानी बेहतर भविष्य की कीमत सेहत से चुकाना, ये तो आज की दुनिया की होड़ की तरफ भी इशारा करता है।
बहुत गहरा इशारा है।
और ये सिर्फ जोसी का संघर्ष नहीं है, उसके परिवार पर भी इसका बहुत गहरा असर है, खासकर उसकी माँ क्रिसी।
हाँ, क्रिसी, वो एक बहुत ही जटिल किरदार हैं। वो पहले ही अपनी बड़ी बेटी सैल को इसी लिफ्टिंग से जुड़ी बीमारी में खो चुकी हैं, तो जाहिर है वो जोसी को लेकर बेहद डरी हुई हैं। उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहती हैं। उनका डर इतना गहरा है कि वो क्लारा में सिर्फ जोसी की साथी नहीं देखती,
बल्कि
बल्कि एक विकल्प भी। उनके मन में एक गुप्त योजना चल रही है कि अगर अगर जोसी नहीं बची तो क्लारा उसकी जगह ले लेगी।
क्या क्लारा जूसी की जगह ले लेगी? कैसे?
हाँ, उसका पोर्ट्रेट, या कह लीजिए एक रोबोटिक शेल बनकर।
ये तो नैतिक रूप से बहुत ही पेचीदा बात है।
क्या किसी की जगह ली जा सकती है?
यही सवाल है, और यहीं पर पिता पॉल का किरदार सामने आता है।
हाँ पिता, वो इस तकनीकी दौड़ से कुछ अलग थलग से लगते हैं, शायद मोहभंग हो चुका है उनका।
बिल्कुल, पॉल टेक्नोलॉजी को लेकर ज्यादा शंकालु हैं। वो अब एक पोस्ट एम्प्लॉयड समुदाय में रहते हैं, मतलब शायद वो लोग जो ऑटोमेशन या समाज के बदलावों के कारण मुख्यधारा के रोजगार से बाहर हो गए हैं। और वो कृषि की इस योजना के सख्त खिलाफ है। उनका मानना है कि इंसान का दिल, उसकी आत्मा, वो अनूठी है, उसे कॉपी नहीं किया जा सकता।
सही कहा, ये माँ और पिता के बीच का तनाव कहानी को और पढ़ते देता होगा।
बहुत ज्यादा।
और ये पारिवारिक तनाव शायद एक बड़े सामाजिक विभाजन का भी आईना है, आपने कहा लिफ्टेड और अनलिफ्टेड बच्चे।
हाँ बिल्कुल, समाज में एक गहरी खाई है। जॉसी लिफ्टेड है, लेकिन उसका सबसे करीबी दोस्त रिक वो अनलिफ्टेड है।
रिक, तो इसका मतलब क्या है उनके भविष्य के लिए?
रिक बहुत होशियार है, हुनरमंद है, खासकर तकनीक में, लेकिन अनलिफ्टेड होने के कारण उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी और करियर के दरवाजे लगभग बंद हैं।
ओह, ये तो बहुत अन्यायपूर्ण लगता है।
हाँ, ये समाज की उस क्रूर सच्चाई को दिखाता है जहाँ आपकी काबिलियत से ज्यादा आपका स्टेटस मायने रखता है। रिक का किरदार उस मानवीय क्षमता का प्रतीक है जिसे समाज नजरअंदाज कर देता है।
तो यहाँ कहानी हमें उस केंद्रीय सवाल पर ले आती है जिसे हम शायद पूरी चर्चा में टटोलते रहेंगे, कि इंसान होने का सार क्या है? क्या ये सिर्फ बुद्धिमता है या कुछ और?
हाँ,
क्या प्यार, वफादारी, त्याग जैसी चीजें, क्या ये सीखी जा सकती हैं या महसूस की जा सकती है, चाहे वो इंसान हो या मशीन?
बिल्कुल, क्लारा की पूरी कहानी इसी सवाल की एक तरह से पड़ताल है।
चलिए अब किरदारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, खासकर क्लारा को। उसकी नजर से दुनिया कैसी दिखती है?
क्लारा की नजर कमाल की है। वो बहुत ध्यान से देखती है, इंसानी भावनाओं के छोटे छोटे इशारों को पकड़ती है, लेकिन उसकी समझ इंसानों जैसी नहीं है।
अच्छा, कैसे?
वो दुनिया को कभी कभी बक्सों में देखती है, जैसे किसी सीन को समझने के लिए उसे टुकड़ों में बांट रही हो। ये उसकी आर्टिफिशियल चेतना की सीमा भी दिखाता है और उसकी कोशिश भी।
बक्सों में देखना।
और उसका सूरज पर विश्वास तो है ही, वो अडिग है, लगभग आध्यात्मिक। वो मानती है कि सूरज ही जोशी को ठीक कर सकता है।
ये दिलचस्प है कि वो पूरी तरह लॉजिकल नहीं है, उसमें एक तरह का विश्वास, एक आस्था है।
हाँ बिल्कुल।
और उसका नैरेटर होना, इशिगुरो अक्सर अविश्वसनीय नैरेटर इस्तेमाल करते हैं, क्या क्लारा भी वैसी है?
मैं कहूंगी क्लारा अविश्वसनीय या अनरिलायबल से ज्यादा सीमित नैरेटर है।
अच्छा, सीमित।
हाँ, वो धोखा नहीं देती, लेकिन दुनिया की और खासकर इंसानी भावनाओं की जटिलताओं की उसकी समझ पूरी नहीं है। इससे एक तरह की ड्रामेटिक आयरनी पैदा होती है।
मतलब पाठक वो समझ जाते हैं जो क्लारा नहीं समझ पाती।
हाँ बिल्कुल। और उसकी यात्रा इंसान बनने की नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव, जो कि अटूट प्रेम और वफादारी है, उसको पूरी तरह जीने की है, चाहे अंत में उसकी जरूरत खत्म ही क्यों ना हो जाए।
ये बहुत मार्मिक बात है। और जोशी, उसकी यात्रा कैसी है?
जोशी की यात्रा बीमारी से जूझने और बड़े होने की है। वो क्लारा पर बहुत निर्भर है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे वो ठीक होती है, उसकी दुनिया बड़ी होती जाती है, और क्लारा पर निर्भरता वो स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है।
जैसे बचपन के सहारे पीछे छूट जाते हैं।
बिल्कुल वैसा ही, बहुत स्वाभाविक चित्रण है।
माँ क्रिसी के बारे में हमने बात की, उनका डर उन्हें उस हद तक ले जाता है जहां वो अपनी बेटी की नकल बनाने को तैयार हैं। क्या वो अंत तक ऐसी रहती हैं या उनमें कोई बदलाव आता है?
क्रिसी का सफर अपराध बोध, डर और नियंत्रण की इच्छा से जूझने का है। उपन्यास के अंत तक आते आते शायद वो ये समझने लगती हैं कि किसी व्यक्ति का सार, उसकी खासियत, वो दोहराई नहीं जा सकती।
अच्छा,
क्लारा शायद जॉजी जैसी बन सकती है, पर वो जॉजी नहीं हो सकती। ये एक दर्दनाक सबक है उनके लिए।
और रिक, वो अनलिफ्टेड होने के बावजूद क्या दर्शाता है?
रिक उस सहज सीधी साधी इंसानियत का प्रतीक है जो शायद लिफ्टिंग की इस दुनिया में कहीं खो रही है। उसका जॉजी के लिए प्यार बिना किसी शर्त का है। वो बाहरी है, सिस्टम का हिस्सा नहीं, लेकिन उसमें एक अंदरूनी ताकत है।
हाँ, वो दिखाता है कि सच्ची काबिलियत जेनेटिक बदलावों की मोहताज नहीं।
बिल्कुल।
पिता पॉल का किरदार भी अहम है, वो क्रिसी के उलट क्लारा के प्रति सहानुभूति रखते हैं।
हाँ, पॉल क्लारा की भावनाओं को, उसकी वफादारी को देख पाते हैं। वो एक तरह से क्लारा के अनजाने सहयोगी बन जाते हैं, खासकर कहानी के एक अहम मोड़ पर।
और एक मिस्टर कपाल्डी का भी जिक्र था।
हाँ, संक्षेप में, वो कलाकार या तकनीशियन है जो जॉजी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं। वो भी चेतना और नकल की संभावना पर कुछ सवाल उठाते हैं।
तो किरदारों के बाद कहानी के मुख्य पड़ाव क्या हैं? वो कौन से मोड़ हैं जो कहानी को और उसके मतलब को समझने के लिए जरूरी हैं?
जरूर। पहला हिस्सा तो क्लारा का स्टोर से जोजी के घर आना और वहां के माहौल को समझना है। जोजी की बीमारी, रिक से दोस्ती, वो लिफ्टेड अनलिफ्टेड का फर्क।
हाँ।
फिर एक अहम मोड़ आता है मॉर्गन फॉल्स की यात्रा पर। वहां जोजी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। यहीं क्लारा दूर एक खलिहान देखती है और उसे लगता है कि ये सूरज का घर है। यहीं वो मन ही मन सूरज से एक सौदा करती है।
सौदा? कैसा सौदा? ये उसके विश्वास वाले पहलू को दिखाता है।
हाँ बिल्कुल। वो तय करती है कि अगर वो पास की कूटिंग्स मशीन, जो कि बहुत प्रदूषण फैला रही है,
हाँ।
अगर वो उसे नष्ट कर देगी तो सूरज बदले में जोजी को ठीक कर देगा।
कूटिंग्स मशीन प्रदूषण का स्रोत?
हाँ, ये उसका तर्क नहीं, उसका विश्वास है, उसकी आस्था है। यहीं से कहानी में क्लारा की विश्वास की छलांग वाला हिस्सा शुरू होता है।
और इसी बीच माँ की योजना भी सामने आती है।
हाँ, मिस्टर कपाल्डी से मुलाकात होती है। पोर्ट्रेट बनाने का काम जोरों पर होता है। क्रिसी का इरादा साफ हो जाता है। पॉल इसका कड़ा विरोध करते हैं।
और वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि इंसान का दिल अनोखा होता है, उसमें कई कमरे होते हैं, उसे दोहराया नहीं जा सकता। ये उपन्यास के केंद्रीय सवालों में से एक है।
और फिर क्लारा अपने सौदे को पूरा करने निकलती है।
हाँ, और इसमें पॉल यानी पिता उसकी मदद करते हैं। क्लारा उस खलिहान तक पहुंचती है और कूटिंग्स मशीन को नष्ट करने के लिए अपने PEG-9 सॉल्यूशन का इस्तेमाल करती है।
PEG-9 सॉल्यूशन?
हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सॉल्यूशन क्लारा के अपने दिमाग, उसके सोचने समझने की क्षमता के लिए जरूरी है। इसे इस्तेमाल करना मतलब एक तरह से खुद को कमजोर करना, अपनी क्षमता का बलिदान देना है।
ये तो बहुत बड़ा त्याग है, एक मशीन के लिए अपनी क्षमता का बलिदान देना।
बहुत बड़ा।
क्या इसका असर होता है? जोजी ठीक होती है? ओह नो।
लेकिन फिर एक सुबह जब सूरज बहुत तेजी से चमकता है, जोजी चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगती है।
सच में?
हाँ, अब क्लारा के लिए ये सबूत है कि सूरज ने अपना वादा निभाया। ये वाकई सूरज का असर था या मेडिकल ट्रीटमेंट का या कुछ और, ये पाठक की सोच पर है, लेकिन क्लारा का विश्वास पक्का हो जाता है।
वाह, ये तो कहानी का एक अहम मोड़ है। और अंत, कहानी का अंत कैसे होता है? जोजी ठीक हो जाती है तो क्लारा का क्या होता है?
साल बीत जाते हैं, जोजी ठीक होकर कॉलेज चली जाती है, रिक से भी उसका रिश्ता बदल जाता है, जिंदगी आगे बढ़ जाती है।
और क्लारा?
क्लारा की जरूरत अब नहीं रही, उसे यार्ड भेज दिया जाता है।
ओह, यार्ड।
हाँ, जहाँ पुराने AF रखे जाते हैं। अंत बहुत शांत है, दुखद है, लेकिन उसमें एक शांति है। क्लारा अपनी यादों को सहेजती है, स्टोर मैनेजर उससे मिलने आती है और वो संतुष्ट है, सूरज के प्रति आभारी।
ये अंत दिल तोड़ने वाला है, लेकिन शायद यथार्थवादी भी। उपयोगिता खत्म तो?
हाँ, शायद।
तो इन सब घटनाओं और किरदारों के जरिए इशिगुरो किन बड़े सवालों या विषयों को छूते हैं? हमने प्रेम और चेतना की बात की थी।
हाँ, वो तो सबसे बड़ा सवाल है ही, क्या क्लारा का प्यार असली है? वो निस्वार्थ है, त्याग से भरा है? तो उपन्यास पूछता है, क्या प्यार की परख उसके स्रोत से होती है, कि वो इंसान से आ रहा है या मशीन से, या फिर उसके इजहार और असर से?
हाँ, क्लारा का प्यार शायद जोजी की माँ के डर भरे नियंत्रण वाले प्यार से कहीं ज्यादा शुद्ध लगता है।
बिल्कुल, यही विडंबना है।
और वो इंसानी रूह या आत्मा के अनूठे होने की बात, पॉल का तर्क था कि इसे दोहराया नहीं जा सकता। क्लारा सब कुछ सीख सकती है, नकल कर सकती है, पर क्या वो इंसान बन सकती है?
शायद नहीं। उपन्यास दिखाता है कि क्लारा इंसानी तर्कहीनता, विरोधाभास, या शायद वो जो शरीर से जुड़ी यादें होती हैं, उसकी परतें पूरी तरह नहीं समझ पाती।
अच्छा।
उसकी अच्छाई लगभग संपूर्ण है, जबकि इंसान तो दोषपूर्ण होते हैं। शायद यही फर्क है। पर क्लारा का नजरिया हमें अपनी जटिलताओं को नए सिरे से देखने में मदद करता है।
हाँ, ये बात सही है। और समाज में बंटवारे और तरक्की की कीमत का मुद्दा भी बहुत अहम है, जैसा रिक के साथ होता है।
बिल्कुल, ये लिफ्टिंग वाला समाज बहुत प्रतिस्पर्धी और चिंता भरा है। ये सवाल उठाता है कि हम तरक्की के नाम पर क्या खो रहे हैं? क्या हम ज्यादा सक्षम होने की दौड़ में अपनी इंसानियत का कोई हिस्सा पीछे छोड़ रहे हैं?
और क्लारा का सूरज पर विश्वास, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। ये तर्कहीन लग सकता है, पर उसके लिए यही सच्चाई है।
हाँ, ये व्यक्तिपरक वास्तविकता यानी सब्जेक्टिव रियलिटी और विश्वास की ताकत को दिखाता है। शायद अर्थ खोजना, किसी चीज पर विश्वास करना, ये सिर्फ इंसानी जरूरत नहीं बल्कि चेतना का ही एक गुण हो, चाहे वो कृत्रिम ही क्यों ना हो।
ये सोचने वाली बात है। और तकनीक और रिश्तों का सवाल, क्या मशीनें हमारी भावनात्मक जरूरतें पूरी कर सकती हैं? क्लारा देखभाल करती है पर क्रिसी उसे बदलना चाहती है।
ये एक तनाव है जो कहानी में बना रहता है। क्लारा की देखभाल सच्ची लगती है, लेकिन क्या वो माँ के प्यार का विकल्प हो सकती है? उपन्यास इसका सीधा जवाब नहीं देता, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।
इचिगुरु की शैली, क्लारा का नजरिया, ये सब मिलकर कहानी को कैसा बनाते हैं? पाठक के लिए अनुभव कैसा रहता है?
क्लारा का सीमित नजरिया पाठक को उसके बहुत करीब लाता है। हम दुनिया को उसकी भोली लेकिन गहरी नजर से देखते हैं, इससे सहानुभूति पैदा होती है उसके लिए। भाषा बहुत साफ और सीधी है पर भावनाओं की गहराई उसमें छिपी है।
हाँ।
और प्रतीक भी बहुत मायने रखते हैं। सूरज है, आशा, जीवन का प्रतीक। कूटिंग्स मशीन है, प्रदूषण और अंधी तरक्की का। क्लारा के वो बक्से दुनिया को समझने की उसकी कोशिश और उसकी सीमाएं दिखाते हैं।
तो कुल मिलाकर ये उपन्यास पढ़ने वाले पर कैसा असर छोड़ता है? क्या भावनाएं रह जाती हैं अंत में?
मेरे ख्याल से ये एक कोमल उदासी छोड़ जाता है, टेंडर मेलैंकली जिसे कहते हैं। क्लारा के लिए दुख होता है यकीनन, लेकिन उसके शांत अंत में एक गरिमा भी है। ये हमें अपनी बनाई चीजों के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर सोचने को मजबूर करता है, और ये सवाल कि हम प्रगति की दौड़ में क्या खो रहे हैं, ये सवाल मन में रह जाता है।
हाँ, और ये चेतना और प्रेम की हमारी परिभाषाओं को चुनौती देता है। क्लारा की आंखों से दुनिया देखकर शायद हम अपनी इंसानियत को, उसकी अच्छाई बुराई दोनों को बेहतर समझ पाते हैं।
अंत में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्यार, त्याग और इंसानी जुड़ाव के मायने हमेशा अहम रहेंगे।
और कैसे कभी कभी एक मशीन की नज़र हमें वो दिखा सकती है जो हम अपनी इंसानी आंखों से शायद देख ही नहीं पाते। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।